नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एडोबी फोटोशॉप सीएस क्लासरूम इन ए बुक एडोबी क्रिएटिव टीम द्वारा तैयार किया गया आधिकारिक प्रशिक्षण मार्गदर्शक है। यह संदर्भ पुस्तक या केवल प्रभावों की सूची नहीं, बल्कि अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम के रूप में फोटोशॉप सीएस के कामकाजी तरीकों से परिचित कराता है। इसका उद्देश्य पाठक को इंटरफेस पहचानने से आगे ले जाकर डिजिटल छवियों को खोलने, व्यवस्थित करने, चुनने, सुधारने, संयोजित करने और निर्यात करने की क्रमबद्ध क्षमता देना है। क्लासरूम इन अ बुक श्रृंखला की पद्धति में सीखना छोटे प्रोजेक्टों और चरण दर चरण निर्देशों के जरिए होता है, इसलिए हर उपकरण को किसी व्यावहारिक परिणाम से जोड़ा जाता है। पुस्तक शुरुआती उपयोगकर्ता के लिए बुनियादी अवधारणाओं का ढांचा बनाती है, जबकि पहले से काम कर रहे डिजाइनर को गैर विनाशकारी संपादन, लेयर आधारित निर्माण और उत्पादन अनुशासन पर ध्यान दिलाती है। चूंकि यह फोटोशॉप के सीएस संस्करण पर केंद्रित है, इसके कुछ मेनू और फीचर आधुनिक संस्करणों से पुराने हैं। फिर भी चयन, टोन सुधार, रिचिंग, लेयर्स, टाइप और वेब या प्रिंट आउटपुट जैसे मूल सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले कार्यस्थल, दस्तावेज और दृश्य नियंत्रण की बुनियाद। पुस्तक का पहला व्यावहारिक आधार फोटोशॉप को केवल चित्र बनाने वाले कार्यक्रम के बजाय दस्तावेज केंद्रित कार्यस्थल के रूप में समझना है। इसमें टूलबॉक्स, विकल्प पट्टी, पैलेट्स, व्यू नियंत्रण और फाइल प्रबंधन का महत्व उभरता है। किसी छवि पर सही काम करने के लिए उसका आवर्धन, दृश्य क्षेत्र और दस्तावेज की स्थिति समझना उतना ही जरूरी है जितना किसी उपकरण का नाम जानना। उदाहरण के लिए, बहुत अधिक जूम पर किया गया रिटच पूरे चित्र के स्तर पर अस्वाभाविक दिख सकता है, जबकि दूर से देखने पर सूक्ष्म किनारों की त्रुटि छिप सकती है। इसलिए विभिन्न दृश्य स्तरों के बीच आना जाना एक कार्यप्रवाह कौशल है। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि पिक्सेल आयाम, रिजोल्यूशन और फाइल प्रकार अलग अवधारणाएं हैं। स्क्रीन के लिए बनाई गई छवि और मुद्रण के लिए तैयार दस्तावेज की जरूरतें एक जैसी नहीं होती। शुरुआत में यह अनुशासन पाठक को बाद की गलतियों से बचाता है, जैसे अनुपयुक्त आकार में काम शुरू करना, मूल फाइल को अनजाने में बदल देना या आउटपुट के लिए अनुपयुक्त फॉर्मेट चुनना। इस प्रकार इंटरफेस की शिक्षा वास्तव में नियंत्रण, निरीक्षण और सुव्यवस्थित संपादन की शिक्षा बनती है। दूसरा, चयन और मास्क के जरिए सटीक स्थानीय संपादन। फोटोशॉप में अधिकांश गंभीर संपादन पूरे चित्र पर नहीं, उसके किसी चुने हुए हिस्से पर किए जाते हैं। पुस्तक चयन उपकरणों की भूमिका को इसी कारण केंद्रीय बनाती है। आयताकार या अंडाकार चयन सरल ज्यामितीय क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, जबकि अनियमित वस्तुओं के लिए लासो, रन या किनारे पहचानने वाले विकल्प अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। लेकिन चयन का वास्तविक उद्देश्य केवल किसी वस्तु को काटना नहीं है, यह तय करना है कि सुधार, रंग परिवर्तन, फिल्टर या कॉपी किस क्षेत्र पर लागू होगा और किस पर नहीं। किनारों की गुणवत्ता यहां निर्णायक है। कठोर किनारा हर विषय पर स्वाभाविक नहीं लगता और बहुत मुलायम किनारा वस्तु को पृष्ठभूमि में गुला हुआ दिखा सकता है। फेदरिंग और एंटी एलियसिंग जैसे नियंत्रण इस संक्रमण को संभालते हैं। मास्क की अवधारणा चयन को अधिक लचीला बनाती है, क्योंकि इससे किसी भाग को स्थायी रूप से मिटाने के बजाय अस्थायी रूप से छिपाया जा सकता है। यह तरीका बाद में सुधार की संभावना बनाए रखता है। पाठक के लिए मुख्य सीख यह है कि साफ कंपोजिट या नियंत्रित टोन बदलाव केवल अच्छे टूल से नहीं बनते, बल्कि विषय और पृष्ठभूमि के बीच सही सीमा पहचानने से बनते हैं। चयन की गुणवत्ता ही अंतिम परिणाम की विश्वसनीयता तय करती है। तीसरा, टोन। रंग और रिचिंग से छवि की विश्वसनीय गुणवत्ता। पुस्तक छवि सुधार को चमक बढ़ाने की सतही प्रक्रिया नहीं मानती, बल्कि टोनल सूचना और रंग संतुलन को नियंत्रित करने का काम मानती है। किसी फोटो में बहुत गहरे शेडो, फीके हाइलाइट्स, गलत रंग झुकाव या कम कॉन्ट्रास्ट अलग अलग समस्याएं हैं, इसलिए इनके लिए एक ही समायोजन पर्याप्त नहीं होता। लेवल्स और कर्व्स जैसे साधन गहरे, मध्य और उजले टोन के संबंध को बदलने में सहायक होते हैं। रंग संतुलन के नियंत्रण से प्रकाश के कारण आए अवांछित गर्म या ठंडे झुकाव को संभाला जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधार को संदर्भ के साथ जांचा जाए। त्वचा के रंग, तटस्थ सफेद या धूसर क्षेत्र और दृश्य का अपेक्षित वातावरण निर्णय में मदद करते हैं। रिचिंग की चर्चा भी इसी संयम से जुड़ती है। क्लोनिंग, हीलिंग या सुधार उपकरण धूल, खरोंच और छोटे दोष हटाने में उपयोगी है, लेकिन अति प्रयोग सतह को कृत्रिम और दोहरावपूर्ण बना सकता है। पुस्तक के अभ्यास पाठक को यह समझने में मदद करते हैं कि तकनीकी सफाई और दृश्य विश्वसनीयता में संतुलन जरूरी है। अच्छा रिटच मूल विषय की बनावट, प्रकाश दिशा और रंग संबंधों को बनाए रखता है। इसलिए सुधार का लक्ष्य छवि को बदलना नहीं, उसके उपयोगी दृश्य गुणों को स्पष्ट करना है। चौथा, लेयर्स से संयोजन, संपादन नियंत्रण और गैर विनाशकारी सोच। लेयर्स फोटोशॉप के उस कार्यप्रवाह का आधार है जिसमें एक चित्र को स्थायी रूप से बदलने के बजाय उसके घटकों को अलग रखा जाता है। पुस्तक में लेयर आधारित काम की उपयोगिता इसलिए महत्वपूर्ण है कि पृष्ठभूमि, विषय, टाइप और प्रभाव अलग अलग नियंत्रित किए जा सकते हैं। किसी वस्तु को नई लेयर पर रखने से उसका स्थान, आकार, अपारदर्शिता और मिश्रण संबंध बदला जा सकता है बिना नीचे की छवि को नुकसान पहुंचाए। यह विशेष रूप से कंपोजिट बनाते समय उपयोगी है जहां अलग स्रोतों से आए चित्रों को एक दृश्य में विश्वसनीय ढंग से मिलाना पड़ता है। केवल कटआउट पर्याप्त नहीं होता, प्रकाश, किनारा, रंग, पैमाना और परिप्रेक्ष्य भी परस्पर संगत होने चाहिए। लेयर मास्क के जरिए वस्तु के हिस्सों को क्रमिक रूप से दिखाना या छिपाना संभव होता है जिससे संपादन वापस लिया जा सकता है। ब्लेंडिंग मोड और अपारदर्शिता जैसे विकल्प परतों के दृश्य संबंध को बदलते हैं और इसलिए इन्हें सजावटी प्रभाव के बजाय दृश्य एकीकरण के उपकरण की तरह समझना चाहिए। यह अध्ययन पद्धति प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। पाठक वैकल्पिक संस्करण बना सकता है, तुलना कर सकता है और गलती को मूल पिक्सल नष्ट किए बिना ठीक कर सकता है। यही संपादन नियंत्रण पेशेवर उत्पादन में समय और गुणवत्ता दोनों बचाता है। अंत में टाइप, वेब ग्राफिक्स और आउटपुट के लिए उत्पादन तैयारी, फोटोशॉप का उपयोग केवल फोटोग्राफ सुधार तक सीमित नहीं है। पुस्तक टाइप और ग्राफिक तत्वों को छवियों के साथ जोड़ने की जरूरत पर भी ध्यान देती है। शीर्षक, कैप्शन या बटन जैसे तत्वों में पठनीयता, आकार, रंग और पृष्ठभूमि से अंतर जरूरी होता है। आकर्षक फॉन्ट चुन लेना पर्याप्त नहीं क्योंकि टाइप को दृश्य पदानुक्रम में अपना स्पष्ट स्थान बनाना पड़ता है। जब चित्र वेब के लिए तैयार किया जाता है तो गुणवत्ता और फाइल आकार के बीच समझौता महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिक संपीड़न से फाइल हल्की हो सकती है लेकिन किनारों, रंग संक्रमणों और बारीक विवरणों में विकृतियां आ सकती है। दूसरी ओर अनावश्यक रूप से भारी फाइल उपयोगकर्ता अनुभव को प्रभावित करती है, इसलिए आउटपुट फॉर्मेट का चयन चित्र की प्रकृति और माध्यम के आधार पर होना चाहिए। सीमित रंगों वाले ग्राफिक और सतत टोन वाली फोटोग्राफ के लिए एक जैसी रणनीति उपयोगी नहीं होती। प्रिंट की तैयारी में भी आकार, रिजोल्यूशन और रंग संबंधों की सावधानी अपेक्षित है। यह हिस्सा पुस्तक को केवल उपकरण प्रशिक्षण से आगे ले जाता है। पाठक यह सीखता है कि संपादन का अंतिम मूल्य तभी है जब फाइल अपने लक्ष्य माध्यम में सही, स्पष्ट और कुशल रूप से प्रस्तुत हो। निष्कर्ष में Adobe Photoshop CS Classroom इन अ बुक उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो फोटोशॉप को बिखरे हुए टूल्स के संग्रह के रूप में नहीं बल्कि एक व्यवस्थित दृश्य संपादन कार्य प्रवाह के रूप में सीखना चाहते हैं। नए उपयोगकर्ताओं को इससे दस्तावेज सेटअप, चयन, रंग सुधार और लेयर प्रबंधन की ठोस शुरुआत मिलती है। प्रिंट वेब या सामान्य डिजाइन कार्य करने वाले विद्यार्थी भी इसके प्रोजेक्ट आधारित अभ्यासों से यह समझ सकते हैं कि किसी आदेश का उपयोग कब और क्यों करना चाहिए। पुराने सॉफ्टवेयर संस्करण पर केंद्रित होने के कारण इसे आधुनिक फोटोशॉप की नवीनतम सुविधाओं का मार्गदर्शक नहीं मानना चाहिए। फिर भी इसकी मूल उपयोगिता कम नहीं होती क्योंकि फोटोशॉप के कई केंद्रीय सिद्धांत जैसे पिक्सल चयन, मास्किंग, टोन नियंत्रण, लेयर संयोजन और आउटपुट अनुकूलन संस्करण बदलने पर भी बने रहते हैं। समान श्रेणी की त्वरित टिप्स पुस्तकों की तुलना में इसकी विशेषता आधिकारिक प्रशिक्षण संरचना है। यह केवल चमकदार प्रभावों के नुस्खे नहीं देता बल्कि कार्यों को क्रम में रखकर कौशल विकसित कराता है। प्रत्येक अभ्यास के पीछे उत्पादन संबंधी तर्क निहित है, जैसे पहले चयन को नियंत्रित करना, फिर स्थानीय सुधार करना और अंत में माध्यम के अनुकूल फाइल बनाना। इसलिए धैर्यपूर्वक अभ्यास करने वाले पाठक के लिए यह पुस्तक फोटोशॉप की पुरानी इंटरफेस भाषा के साथ साथ आज भी उपयोगी संपादन अनुशासन और दृश्य निर्णय क्षमता विकसित करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं Adobe Creative टीम, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।